जो किसी स्त्री के रूप पर मोहित होता है। दीप सिखासन जुवत तना मनजल होश पतंग। ये स्त्रियों का जो रूप है अथवा स्त्री के लिए पुरुष का जो रूप है, इस तरह स्त्री का जो रूप है खास करके वह दीपक की शिखा के समान गौर वर्ण की। प्राय लोक में जानते हैं कि पुरुष जो है वो सवरिया और स्त्री गोरी। पुरुषों के लिए सवरिया सवरिया लगाकर गाते हैं कम, और किसी भी स्त्री के लिए गोरी लगाते हैं। तो स्वाभाविक दीपक की शिखा से उसका मेल है, रंग ऐसा है। और मनुष्य कैसा है, पुरुष कैसा है, उसका मन कैसा है, तो पतंग है, फतिंगा। वो देखता है कि ये स्त्री छूने लायक है, आलिंगन करने लायक है, इसके साथ रहना चाहिए। और जे ही साथ में होता है ते ही पाख टूट जाती है, जवानी सवानी सब खत्म, सुख खत्म, और बाद में घोर नरक। प्राय सब दुख देखा जाता है, नश्यति नष्ट हो जाता है। उस स्त्री के लिए ही जीवन भर काम करता रहता है, विवेक नष्ट हुआ, कॉन्शियसनेस चेतना सब नष्ट हो जाती है, और शरीर की कांति भी नष्ट हो जाती है। और उसके पालन पोषण में जो चिंता करता है तो उससे भी कांति फीकी होती है, तो मन की शांति चली जाती है, काम का उद्रेक हो जाता है, क्रोध हो जाता है, लोभ आता है, दूसरों से झगड़ा करना, ये करना, वो करना, इस तरह से पाक साक सब जला और मर जाता है। इस तरह की दशा है। दृष्ट्वा स्त्रियं देव मायां तद्भावै रजतेन्द्रियः प्रलोभिता पतत्यंधे तमस्यग्न पतंगवत। देव माया स्त्री को देखकर तद्भाव, माया इसलिए स्त्री को कहा गया है मोहकत्वात्, क्योंकि वो भ्रम में डाल देती है। पुरुष के मन में यह भावना हो जाती है कि यह बहुत भोग की सुंदर वस्तु है, यह हमारे पास है तो मैं सुखी रहूंगा। इसको कहते हैं मोह भ्रम। तो पुरुष के चित्त को मोहने में समर्थ होती है, इसलिए उसको माया कहा गया। यह भगवान की प्रकट माया है स्त्री। एक तो अपने आप यह माया है, और ऊपर से बहुत बहुत भाव लगती है दिखाने। भावई, भावई का अर्थ है कि उसके मन में जो बात आती है उसको अपने आंखों से इशारा करना, हंसना, और कई कई तरह से बात करना पति से, कई तरह से वो प्रलोभित करती है। उसके तो शरीर की ही, शरीर का रंग ऐसा है कि वो अपने आप ही मोहित है, और ऊपर से तब तक अपने हृदय का स्नेह व्यक्त करने लगती है, तब प्रलोभिता मोहिता प्रलोभित हो जाता है उसके भावों से बातचीत। अगर कोई स्त्री यह कह दे अपने पति से कि आप मर जाएंगे तो मैं तो उसी दिन आपके साथ ही जलूंगी, मैं अधिक दिन नहीं जीऊंगी, अब इतना कर तो वह उसके लिए क्या नहीं कर सकता है, और वो काहे को मरने जाए। हो सकता है कि पति जब मर जाए तो उसी दिन वो टीवी देखने लगे। दूसरा शहरों की स्त्रियों की बात में कह रहा है, लेकिन ऐसी स्त्रियां कहती हैं, जैसे सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि हाँ तेरे संग ही में मरूंगी जलूंगी, दिया धूप धन खाए। स्त्री कहती है कि आप जब मरेंगे तो मैं भी साथ में जल जाऊंगी, मर जाऊंगी। यह कह करके धोखा दे करके स्त्री सब धन खा गई। दिया दूध धन खा। भाई हम पर कोई रंज मत होना, क्योंकि मैं तो प्रसंग में कह रहा हूँ, कोई अपने से गढ़ करके नहीं कह रहा है। एक तो स्त्री का सौंदर्य, दूसरे उसका स्नेह, तीसरे उसका वचन, और आंखों का इशारा, और चीज, आप तो प्रलोभिता लुब्ध हो जाता है। किसी तरह से इसको आबाद रखें, इसको ठीक से रखें, ये प्रसन्न रहेगी तो सब सुख है, इसी में पड़ा रहता है। और जैसे पतंग अग्नौ पतति, जैसे पतंग अग्नि में गिर कर स्वाहा हो जाता है, दीपक में गिरे तो वो तो कुछ चांस रहता है कि जल कल करके इधर उधर कुछ जी जाता है कुछ दिन, लेकिन आग जल रही हो और उसमें गिर जाए तब तो एक आध सेकंड में भुंजा करके वहीं खत्म हो जाए। तो अग्नव पतंग, जैसे अग्नि में पतंग कूद पड़ता है उसके प्रकाश को, उसके सौंदर्य को देख करके, इसी तरह से स्त्री के भावों से और सौंदर्य आदि से यह प्रलोभित होकर के उसमें कूद जाता है। पतती, पतती का अर्थ है उसमें आसक्त हो जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि अंधे तमसी पतती, घोर अंधकार रूप अज्ञान में गिर जाता है। बाद में तो नरक में गिरता है, नरक में गिरता है स्त्री की आसक्ति के कारण 99% आदमी नरक में गिरते हैं स्त्री के कारण, स्त्री की आसक्ति के कारण ही सारा पाप होता है। आप अगर समीक्षा करके देखिए तो जितने बड़े बड़े पाप होते हैं सब परिवार के लिए होते हैं, परिवार मतलब स्त्री। लोग कहें किसी से पूछते हैं परिवार के साथ आए हैं कि अकेले आए हैं, तो अगर स्त्री नहीं है तो कहते हैं हाँ नहीं परिवार के साथ नहीं है। जितना भी पाप हो रहा है, कसाई जो काटते हैं गाय भैंस है सब, वो परिवार को पूछने के लिए काट रहे हैं, बेच करके चाहे खा करके, जो भी राजा बन करके कोई घोटाला हवाला करते हैं वो भी परिवार के, साधु बन करके भगवान का पैसा चुरा चुरा करके कोई लेते हैं वो भी परिवार के। तो इस तरह से ये जो परिवार का केंद्र तो स्त्री है, तो सारे पापों का मूल केंद्र स्त्री है। बच्चा आदि के लिए ध्यान पाप करता है तो स्त्री के कारण है, स्त्री से उत्पन्न हुए हैं इसलिए वो स्त्री का विस्तार माने जाते हैं। इसी कारण से भगवान कह रहे हैं कि तमसी अंधे पतती, घोर नरक में गिरता है। पहले तो अज्ञान में गिरता है, भोग्य बुद्धि करता है स्त्री में, हमेशा पड़ा रहता है उसी के अधीन, और बाद में नरक में गिरता है। इस जीवन में अज्ञान में और बाद में नरक, ये दोनों आदमी को अंधा बना देते हैं, अंधा का विवेकहीन। इससे शिक्षा मिलती है कि पतंग की तरह स्त्री के रूप पर लुब्ध नहीं होना चाहिए। तब यह एक प्रश्न होगा कि तब स्त्री रखा ही नहीं जाए क्या? नहीं रखिए, लेकिन जैसे दीपक से काम ले लेते हैं आदमी, बिना दीपक जलाए काम नहीं चलता है, बिना अग्नि जलाए काम नहीं चलता है, भोजन पकाने के लिए आप जलाते हैं या घर का अंधकार दूर करने के लिए दीपक जलाते हैं, तो ठीक है विवाह करके स्त्री लाभ है, लेकिन दीपक से जैसे हम प्रकाश ले लेते हैं उतना ही काम ले, न कि उसमें जल जल कर मर जाए पतिंगा की तरह। जैसे आग से रोज चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा से भोजन पकाते हैं ना, अग्नि जलाते भोजन पकाने की, यह नहीं कि उसमें अपना हाथ पैर डाल करके और भूज ली, जलते नहीं है। स्त्री को साथ रखे लेकिन फतिंगा की तरह बस उसी में रति मति करके मर ना जाए। अरे सोचे कि अब चले भागवत सप्ताह में, तब तक कोई स्त्री आकर कह दे कि नहीं नहीं मत जाइए क्या जरूरत है, और यह सुन करके अगर कोई नहीं आए भागवत में तो समझ जाना चाहिए कि अब दीपक की शिखा में जलना चालू है। स्त्री है तो स्त्री से कुछ खास संबंध है, बस उस संबंध के लिए, मतलब पुरुष को हेल्प करने के लिए वो आई है, न कि उसी में कूद करके और आदमी मरे, उसी में फंस कर मरे। हेल्प क्या है? हेल्प यह है कि स्त्री पुरुष मिल करके एक होते हैं, एक इकाई बनते हैं, तो दोनों मिल करके घर गृहस्थी बसाते हैं, घर मकान बनाते हैं, कमाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और माता पिता बन जाते हैं बाद में, तो बच्चों का देख रेख करते हैं, इसकी आवश्यकता है। लेकिन पुरुष इतना न स्त्री में फंस जाए कि बस फतिंगा की तरह चले, यह यहां भाव है। गृहस्थों के लिए ही अशिक्षा है, विरक्तों के लिए शिक्षा हाथी का उदाहरण देकर आएगा, आएगी शिक्षा। अब यहाँ गृहस्थों के लिए शिक्षा दी जा रही है, स्त्री देव माया है, भगवान की प्रकट माया है, उसमें उसके रूप पर मोहित होकर के पतंग की तरह जलना नहीं चाहिए। चाहे स्त्री उपलक्षण है, स्त्री के साथ ही साथ अन्य इंद्रियों के जो विषय है उनको भी कह रहे हैं। जो सिद्ध हिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्य सुमाया रचते सुमूढ़ प्रलोभितात्मा हिपभोग बुद्ध्या पतंग वर्णस्यति नष्ट दृष्टि। जो सिद्ध, ये तो रूप का विषय, आंख का विषय है, स्त्री के रूप पर मोहित होता है जीव। इसके साथ ही साथ वास्तव में स्त्री में पांचों विषय है, वो पर्याप्त हो गया कहना, लेकिन फिर भी सबसे पहले आंख ही प्रेरित होती है किसी विषय में, और विशेष करके स्त्री को जब कोई देखता है तो सबसे पहले उसका रूप दिखाई पड़ता है, तो आंखें लुब्ध होती हैं, इसलिए यहां पहले वर्णन किया गया। परंतु स्त्री में पांचों विषय है, कान का भी विषय है, जब बोलती है तो उसकी बोली जितनी सुंदर लगेगी अमृत के समान कान के लिए, उतना दूसरा शब्द नहीं लग सकता है जो स्त्री में आसक्त है व्यक्ति। तो श्रवण इंद्रिय का भी विषय स्त्री है, स्पर्श इंद्रिय का तो है ही, और बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके देती है पति को, तो रसनेन्द्रिय का भी विषय प्रस्तुत करती है जिह्वा के लिए, अथवा उसके अधर आदि को आदमी चुनता है तो यह भी जिह्वा का विषय हुआ। कितना हुआ है? और उसके शरीर पर लगे हुए सेंट आदि को सूंघता है तो नासिका का विषय है। तो पांचों विषय सुलभ है स्त्री में, लेकिन फिर भी रूप है सबसे अधिक आकृष्ट करता है, इसीलिए रूप को अलग कह दिया गया। एक बार रूप में आसक्त होकर के पतंग की तरह आदमी नष्ट होता है। और फिर और कह रहे हैं जो सिर्फ स्त्री हिरण्य सोना आभरण गहना और अंबर कपड़ा और आदि, आदि मतलब खान पान कुर्सी बेंच जो भी सामान है दुनिया में भोग का उपकरण, इन सब ये सब वस्तुएं क्या है? तो माया रचिते सु, भगवान की माया के द्वारा बनाई गई, ये विनाशी है, नश्वर है। सुनिए सुनिए, सावधानी से सुनिए, आप ही लोगों के लिए कथा हो रही है, सभी लोग फंसे हुए हैं। ए हस्तिमोचन दास, पैर नीचे करके बैठिए, सो रहे हैं। तो स्त्री सोना गहना या बढ़िया बढ़िया कपड़ा, घर द्वार फर्नीचर खेत बधार या पुत्र आदि जो भी है माया रचिते, माया के द्वारा रचित। और यह मूढ़ व्यक्ति, देह में आत्म भावना करने वाला यह मूर्ख प्रलोभित आत्मा, इसका चित्त मोहित हो जाता है उनमें। क्यों? उपभोग बुद्धिया, इसकी बुद्धि होती है कि ये मेरे सुख के लिए सब सामान बनाए गए हैं, इसलिए इसका संग्रह करो जितना भी संग्रह हो सके। और वास्तव में देखा गया इतिहास में कि जो धनी हुआ बलवान हुआ वो स्त्रियों का संग्रह करता, जैसे रावण अनेक जगह की स्त्रियों को लाता था भोगने के लिए, है धन्य कृष्ण खड़ा देख रहे। और विमान छीना था अपने भाई का, कुबेर जी का, धन छीन करके लाता था, दुनिया से इतना धन लाया था, इतना सोना कि सोने का नगर बना दिया। और दूसरे लोग भी नगर तो नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा करते, करना चाहते, गहना बनाते हैं, कपड़ा क्या क्या। कई बार तो आदमी दो चार कपड़े से काम चल सकता है, लेकिन फिर भी 20-20 सेट कपड़ा रखता है, 100-100 सेट कपड़ा। और कुछ लोग इस पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम तो दिन में कई सेट बदल देते हैं। अरे कितना भी बदलो इससे होगा क्या? जब नरक में जाओगे, सुअर बनोगे, तब कई सेट बदलोगे देखा जाएगा, तब तो एक सेट भी जिंदगी में नहीं बनेगा ना। सेट क्या बनेगा? वही गुह का सेंट लगेगा और तब पता चलेगा सेट बदल रहे। इस तरह से आदमी प्रलोभित आत्मा, प्रलुब्ध है। प्रलोभित का अर्थ है और प्राप्त करने की लालसा, और ये हो जाए वो हो जाए। उपभोग बुद्धि से सोचता है मैं इसको भोगूंगा, सुखी हो जाऊंगा। नष्ट दृष्टि, विवेक तो नष्ट हो जाता है, और अतः पतंगवत नश्यति, पतंग के समान नष्ट हो जाता है। इसलिए पतंग से यहाँ शिक्षा मिली कि रूप पर मोहित नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। अब मधुकर से शिक्षा देखिए। पृथ्वी वायु आकाशम आपोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजग्रह सिंधु पतंगो, यहाँ प्रकार है। अब मधुकृत, मधु बनाने वाला, मधु बनाने वाला, बनाना क्या, मधु इकट्ठा करने वाले से सीखिए। मधु सभी जानते हैं, मधुमक्खी मधु लगाती है तो हम लोग कभी कभी छुड़ाते हैं या दूसरे लोग छुड़ा करके लाते हैं, सीसी भरी रहती है, लोटा भरा रहता है, कुछ लोग भर भर बाल्टी में मधु छुड़ा लेते हैं, लेकिन वह मधु फूलों से इकट्ठा किया जाता है और बहुत थोड़ा थोड़ा। कोई मधुमक्खी अगर ढो करके ला रही है मधु तो आप देख भी नहीं सकते कहाँ लेकर आ रही है, कैसे आ रही है, और उसको वो जमा करती है मधुमक्खी। और भ्रमर दो तरह के मधुकृत है, भौंरा और मधुमक्खी। तो भौंरा भी जब फूल पर बैठता है तो फूल से बहुत थोड़ा मधु लेता है कि फूल को नुकसान न हो, बेचारे फूल तहस नहस न हो, और उसमें से वो ले लेता है, उसको मधुकर कहते हैं। मधुकर का यह स्वभाव है हमेशा एक फूल से दूसरे फूल पर जाना, ये प्राय उसका स्वभाव है, हमेशा इस फूल से उस फूल जाता रहता है, एक जगह सताता नहीं। तो एक साधु को जो मधुकरी करके रहता है उसको सीखना चाहिए भावरा से। यहां भगवान बता रहे हैं मधुकरात शिक्षिता मां स्तोकम स्तोकम ग्रसित ग्रासम देहो वर्तित जावता, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए जिससे देह चल जाए। देह जावता वर्ते तावत एवं स्तोकम स्तोकम ग्रसे, थोड़ा थोड़ा खा। यहाँ थोड़ा थोड़ा का मतलब है कि गृहस्थों के घर से थोड़ा थोड़ा लावे, टुकड़ा लावे। गृहान अहिंसन, गृहों के हिंसा न करें। गृह का अर्थ गृही, जिसे किसी गृहस्थ को पीड़ा ना हो, उसको दुख ना हो, इतना ही लावे कि वो खुशी के साथ दे दे। और रोज नहीं, ये प्रतिदिन की बात नहीं कही जा रही है, प्रतिदिन ये नहीं कि प्रतिदिन कहीं फूल से रोज रोज लावे तो दुख हो जाए। एक तो थोड़ा थोड़ा ले, और गृहान अहिंसन, गृहस्थ की हिंसा न करते हुए, अहिंसा मतलब उसको दुखी न करते हुए, और लावे गृहस्थान अहिंसन अपीड़यन। तो गृहस्थ कहना चाहिए तो गृह क्यों कहे, संस्कृत में एक नियम है कि अधिष्ठान में कोई अधिष्ठित है तो अधिष्ठित को न कह करके अधिष्ठान को ही कह दिया जाता है, काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं भारत के साथ किसी देश का मैच चल रहा है, अमेरिका का मान लीजिए मैच चल रहा है, तो उस समय ऐसे कह दिया जाता है कि भारत मैच खेल रहा है, या जीत गया तो कहेंगे कि भारत जीत गया। तो भारत ही पूरा उठ करके कहीं नहीं आया है मैच कर रहा है, लेकिन भारत अधिष्ठान है और उसमें अधिष्ठित खिलाड़ी है, इसलिए भारत कहने से भारत का खिलाड़ी बोध हुआ है। तो गृह कहने से गृहवान बोधित हुआ है, गृहस्थ। गृहस्थों की हिंसा न करे, हिंसा का मतलब है उनको तकलीफ न दे, क्योंकि बेचारे अपने बाल बच्चे के लिए कमाते हैं, बनाए हैं घर में भोजन, केवल भोजन से ही है, काम फर्ज नहीं है, मुख्य तात्पर्य भोजन से है, लेकिन और भी जो पैसा कपड़ा जो भी लेना हो तो इतना ही ले लो कि हमारा भी काम चल जाए, उसका भी काम चले, उसको कोई दुख न। और देहो बरते जाता, जितना से देह चल जाए, मुख्य रूप से भोजन यहाँ अर्थ लेना है। वृत्ति माधुकरी आतिष्ठ मुनि, माधुकरी वृत्ति में रहे, माधुकरी वृत्ति मान मधुकर की वृत्ति, माधुकरी वृत्ति भावरा की वृत्ति, एक जगह से नहीं ले, कई घरों से ले, थोड़ा थोड़ा गृहस्थ को दुख न हो। स्तोकम तुकम थोड़ा थोड़ा ले, थोड़ा थोड़ा ग्रसित ग्रासन, ग्रसित ग्रासन का एक कारण कहते हैं कि जहां मिले वहीं खा जाए, परंतु ये अर्थ नहीं है। भावरा लाता है कई जगह से, लेकिन एक जगह रखता है। थोड़ा थोड़ा लावे, गृहस्थ को सतावे न, यह कहा। थोड़ा थोड़ा लावे माधुकरी वृत्ति में रहकर अहिंसन। अब यहाँ प्रश्न ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ दुखी नहीं हो रहा है बल्कि प्रसन्न हो रहा है, तब भी वहां से ज्यादा न लावे। आगे का श्लोक है इसको व्यक्त करेगा, सायंतन वाला श्लोक। इस तरह से मधुकर बन करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके खाए। खासकर उन साधुओं को यह बात कही जा रही है, कोई अर्जन नहीं, जो अर्जन नहीं करते, कमाते नहीं, कुछ नहीं करते, मधुकरी वृत्ति में है, तो शरीर चलाने के लिए तो भाई खाना जरूरी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकर के खाए। ये नहीं कि किसी गांव में गया 40 रोटी बांध करके लेते हैं, नहीं, मधुकरी लाए, मधुकरी लाए। कोई दो चार आदमी गए तो दौड़े या मधुकरी मांगे, कभी नहीं मांगना चाहिए। वास्तव बच्चा है खिलाए नहीं तो सीधा कह दीजिए, और खुद जो मधुकरी वृत्ति में है, अजगर है, वो क्या करेगा, दूसरे अजगर के लिए थोड़ी बिटाएगा। यह गृहस्थी चालू हो जाती है वास्तव में। अभी जिसका संबंध रह ही गया कि आज हमारा आदमी आया है, वो आदमी आया है, तो वो क्या अजगर बनेगा, क्या मधुकर बने। अच्छा, केवल मधुकरी वृत्ति ही नहीं, मधुकर जैसा सारक ग्राही भी होना चाहिए, सार चीज को ले ले, जहां से भी जिससे भी भगवान कृष्ण की भक्ति में सहायता मिले वो भक्ति ले लेनी चाहिए, विशेष करके शास्त्रों से। अनुभ्यश्च महाभ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्या पुष्पेभ्यः इवसत्पदः। तो चाहे छोटे छोटे ग्रंथ हो चाहे बड़े बड़े, यहाँ छोटे बड़े का मतलब कलेवर की दृष्टि से ही नहीं हुआ, छोटे छोटे शास्त्रों का मतलब है इधर के गीत लिखे हुए, कुछ लोक भाषा में भी गीत प्रसिद्ध हैं जो सूरदास जी ने लिखा है, ये बाद में कई कवियों ने, भक्तों ने लिखा है, इसको अनुशास्त्र कहते हैं। और बृहद शास्त्र कहते हैं श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, उपनिषद आदि। तो चाहे बड़ा शास्त्र हो चाहे छोटा शास्त्र, कुशल नर को चाहिए, दक्ष आदमी को चाहिए कि वो सर्वतः सारम आदत्य, सबका सार ले ले, जहां भी भगवान की भक्ति की बात कही गई हो उसको ले ले। जैसे पुष्पों से छठ पद छह पैर वाला भ्रमर सार ले लेता है। कई तरह के पुष्प देखे जाते हैं, कई पुष्पों में कांटे भी होते हैं, जैसे गुलाब का फूल कांटा होता है, कई तरह के पुष्प होते हैं जिनका स्वाद एक तरह का नहीं होता है, लेकिन उनका जो मधु है, सार चीज है, वो भौरा ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि कोई अब ग्रंथ याद करने लगे तो भक्ति की बात न हो फिर भी उसको अब पढ़ने में समय बर्बाद कर रहा, बस उसे काम भर अपना लिया, भगवान की भक्ति का पोषक वाक्य लिया, छोड़ काम भर चीज ले लेना चाहिए। लेकिन यह कह करके भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि अरे ये हमारे काम की चीज नहीं है, हो सकता है आपकी काम की चीज उसमें हो। और कुछ तो ऐसे हैं ग्रंथ जिसमें मधु के अलावा कुछ है ही नहीं, जैसे भागवत, उसमें कुछ छांटना नहीं है, वो तो निकाला हुआ मधुर है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम रसम, वो तो रस और मधु है निकाला हुआ है, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ छोड़े कुछ ग्रहण करें। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जैसे महाभारत है, उपनिषद है, और बहुत से ग्रंथ है, पुराण है, जिनमें भक्ति का वर्णन है लेकिन कम है, तो जहां जहां है वहां से ले ले, बाकी छोड़। और भी दूसरे की पुस्तकें हैं, जैसे मान लीजिए बाइबिल है, या और भी ग्रंथ हैं, यदि पढ़ने की शक्ति हो किसी को और उसमें से अच्छी बात मिले तो उसको ले लेना चाहिए, भावे की तरह सार ग्राही होना चाहिए, सार चीज को ले लेना, ये भावरा से सीखना है। तो दो शिक्षा हुई भावरे से। अब मधुमक्खी से शिक्षा देखिए, दो प्रकार के मधुकृत हैं, मधु करने वाले, एक तो शिक्षा थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए और दूसरी शिक्षा है कि संग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ला ला करके एक जगह इकट्ठा करे, इकट्ठा करने पर क्या होगा कि जैसे मधुमक्खी है, मधु तो जाता ही है और वो भी मारी जाती है, सहते न विनश्य, मधु भी नष्ट होता है, मधु छुड़ाने वाले ले जाते हैं और धुआं हुआ करके मधुमक्खियों को ही मारता है। एक संग्रह नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा है विरक्त साधु के लिए। सायंतनम स्वस्तनम व न संग्रहित भिक्षितम, मुनि को चाहिए, एक विरक्त साधु को चाहिए कि आज मान लीजिए दोपहर को खा लिया तो सायं के लिए न रखे, सोचे कि बच गया कह दे कि ये शाम को खाऊंगा, ये कल खाऊंगा, बाल भोग कर लूंगा, नहीं सायंतनम स्वस्तनम, सायंतनम मतलब ये सिद्ध कर रहा है कि दोपहर में खाया है चाहे सवेरे खाया है, तो मुनि सोचता है कि ये शाम के लिए रख दू, इसका अर्थ है कि शाम को नहीं खाना है, अथवा शाम को खाया भी तो कल के लिए न रख दे। प्राय लोग सोचते हैं ये शाम के लिए रख रहे हैं, कल के लिए रख रहे हैं, तो कुछ लोग कहा करता है चार साल करके रख दे एक महीने के लिए, बस रखना नहीं है, है? हाँ देखिए सायं तनम सायंकालीन भोजन ना रखे, ये ना सोचे कि शाम को रख दू खाऊंगा या कल के लिए रख दू खाऊंगा, जब शाम और कल के लिए नहीं रखना है तो परसों चौथे और सप्ताह महीना वर्ष की कहां बात, फिर बैंक में रुपया जमा कर दे इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं विरक्त साधु के लिए। न संग्रहित तो, न संग्रह करे यदि भिक्षुक, भिक्षुक है तो सन्यासी है तो, मतलब विरक्त को चाहिए कि वह भोजन तक का संग्रह न करे, सायंकालीन भोजन को भी न रखे और सवेरे भी न रखे। जैसे मधुमक्खियां मक्षिका युवा, जैसे मधुमक्खियां फूलों से मधु ले लेकर के लगाती, अगर उसी समय लेकर के पी जाती तो काम में आ गया होता है, लेकिन वो इस आशा से रखती है कि अब कब अंजरिया में क्या अंधरिया में कब पीती है अंजोरिया, पूरा अंधरिया में मेहनत करके और अंजोरिया में पीना चालू करेंगी, तब तक बीच में ही सारा लूटपाट। अच्छा लूटपाट इतना ही नहीं होता है, मधु तो लूटा ही जाता है, मधुमक्खियों को भी मार दिया, क्योंकि जानते हैं कि इनका धन जब लिया जाएगा तो ये भी डंक मारने के लिए आएंगे, इसीलिए धुआं क्या क्या करके और उनको तहस नहस, तो मधु संचय करने के कारण मारी गई, खाली होती उसी समय तो मधु भी स्वार्थ में आ जाता, जीवन भी रहता है, जीव भी गया और धन भी गया, दोनों का संग्रह करने, मधु भी स्वार्थ में आ जाता, जीवन भी रहता है, जीव भी गया और धन भी गया, दोनों का संग्रह करने पर। और साधुओं की मरम्मत ब्रजवासी लोग कभी कभी करते रहते हैं संग्रही साधुओं, खास करके वास्तव में ब्रज में रहने वाले मधुकरी करने वाले भक्तों को एक बिल्कुल सीख लेना चाहिए, और नहीं जब यह वृत्ति नहीं है, नहीं कर सकते, तो दंभ करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आगे प्रचार करें, दंभ नहीं करना चाहिए, जिस धर्म में कूदे तो उसका पालन करना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो पहले शास्त्रों का सार सीखना चाहिए, देखिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए लेते रहना चाहिए ज्ञान, लेते रहना चाहिए भक्ति पर ज्ञान, और यहाँ है कि भिक्षा का भी संग्रह न करें, ये भिक्षितम शब्द, भिक्षितम का अर्थ है कि भिक्षा में मांगी हुई वस्तु भोजन। कोई कभी कभी ये सोच करके लोग ये रख देते हैं कि अब क्या कल जाएंगे, आराम रहेगा, बिना मांगे खा लेंगे, रख देंगे तो खा लेंगे, प्राय साधु लोग रखते हैं, लेकिन नहीं रखना चाहिए। न संग्रहणी, तो संग्रह न करें। लेकिन एक प्रश्न हो सकता है कि भाई आखिर जब भावरा की तरह इकट्ठा करेंगे तो रखने के लिए कोई पात्र चाहिए ना, भीख मांगने के लिए कोई पात्र चाहिए ना, तो उसको कहते पाणी पात्र। वो भी झोली में न मांगे, कमंडल में न मांगे, हाथ में मांगे। इसका अर्थ है कि स्वादिष्ट पदार्थ दूध और दाल आदि का तो कोई सवाल ही नहीं, रोटी खा ले, अरे दूध भी दिया तो ऐसे छाक लगा करके पी ले खत्म। नहीं पारी में तो सब तो ओड़ी ओड़ी सब पारी में आ जाएगा। कुछ भी हो, यहाँ संकेत है पानी पात्रम, और दूध भी लेना है तो उसी समय जो लिया पी लिया बस। नहीं, दो दो पात्र यहाँ कहा गया है, मत्र का होता है मटका और मत्र, नहीं अमत्र, अमत्र का होता है मटका, मिट्टी का बर्तन। तो जैसे आदमी भीख मांगता है तो भीख मांगने के लिए दूसरा बर्तन होता है, जैसे चंबल, चंबल की चंबल भीख मांगने के लिए कटोरी होती है, और भीख मांग करके जुटा लेते हैं तो रखने के लिए पात्र होता है। तो भीख मांगने के लिए हाथ और रखने के लिए उदर, बस यह दूसरा बर्तन में ये मटका जैसा रहता भी है कुछ साधुओं का। अमत्र उदर एवं अमत्र, उदरा मत्र, भीख मांगने के लिए हाथ और रखने के लिए पेट। और मान लीजिए अगर संग्रह कर लिया तो संग्रही, अगर संग्रही हो गया तो मक्षिका इव न भवती, फिर वो नहीं रहेगा, या तो जान से मारा जाएगा और नहीं तो वह भिक्षुक नहीं रहेगा, ये अर्थ है। अब वो धीरे धीरे संग्रह करके और गृहस्थ के लाइन पर चल देगा। संग्रह करने वाला कभी भी अरियल संन्यास नहीं रह सकता है, भिक्षुकार से संन्यास। और लोग जो लोग लुंगी पहन रहे हैं वो लोग भी तो अपने को सन्यासी समझते ही है, इसलिए सबको ये नियम पालन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई फॉर्मल सन्यास लिया है तभी, किसी भी विरक्त के लिए चाहे सादा कपड़ा पहना हो चाहे कुछ भी, विरक्त के लिए नियम बताया जा रहा है। अब कोई करे न करे तो भगवान क्या करेंगे, लेकिन भगवान जो असली बात है वो बता रहे हैं। उदर अमत्र और पाणी पात्र ये होता है, ऐसा पाने। शिव चक्रवर्ती पाद जी हम लिखते हैं इस टीका को देखिए, मधुम करोति इति मधुकर इति शब्देना मधुमक्षिका अपि उच्यता। मधुमक्खी को भी मधुकर कहते हैं, वो भी मधु इकट्ठा करती है। सायम इदम भोक्षे स्व इदम भोक्षे इतना रख दिया, इसको शाम को खाऊंगा, इसको कल खाऊंगा, यह सोच करके। इति भिक्षितम अन्नादि न संग्रहितम, न संग्रह करे। अतः सायंतनम स्वस्तनम व निमंत्रणम व न संग्रहणीया, यहां तक कि निमंत्रण भी कल के लिए मिला है उसको भी न संग्रह करे। कुछ लोग आज ही निमंत्रण आ गया है और कार्ड रख लेते हैं कल खाऊंगा जाना, तो कई तरह का संकल्प भर रहेगा कि वहां जाना, ये जाना, वो जाना, तो रोज की भिक्षा का भी नियम बिगड़ेगा। चक्रवर्ती पाजी कह चुकी, ये लोग तो ये सब किए हैं ब्रज में रह करके। सायंतनम स्वस्तनम व निमंत्रणम व न संग्रहणीयम, निमंत्रण भी न स्वीकार करें। केनो पात्र गृह गृह भिक्षा कुरिया, किस पात्र में घर घर में भिक्षा करेंगे, तो इसको कह रहे हैं पाणी पात्र, पाणी पात्र में भिक्षा मांगेंगे। आ सर्वतो भिक्षित ग्रासन आनी या कुत्र स्थापे, और सब घर से भिक्षा लेकर कहां किस बर्तन में रखें, किस मटका में, तो उदरा मत जो लाए वो पेट में रखे, मतलब पेट में रखने भर ही मांगे, इसे अधिक न मांगे। उदरा में वह अमत्रम भिक्षा निधान भांडन जस्य सम, इतनी ऊंचा स्टैंडर्ड, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है। वास्तव में जब विरक्त साधु हुए और बाबा जी हुए तो ऐसा ही होना चाहिए क्या?
अरे मान लेंगे मुझे साधु,
समझ में नहीं आया चक्रवर्ती पाज कह रहे हैं किस बर्तन से मांगेंगे घर घर से, तो पानी पात्र हाथ में मांगेंगे, मांग करके लाएंगे तो उसको रखेंगे कहाँ, तो उधर में। मैं ये अर्थ नहीं सन्यासी के लिए है कि कई घरों से मांग करके एक जगह सरोवर पर नदी पर जहाँ पानी हो वहाँ खाए, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ खड़े खड़े इधर उधर खाता चले। हाँ भाई कुछ भाव समझ लेना चाहिए भाव लेकिन अब लाए तो फिर उधर के अलावा और जगह नहीं रखना है, अगर कदाचित बच गया तो कोई कुत्ता तक डाल दिया, पहले तो ये कोशिश करे कि बर्तन से ज्यादा आवे ही ना, रोज अंदाज मिल जाएगा ना, खाने वाले को खुद अंदाज नहीं मिलेगा कि कितना से भर जाएगा पेट, बचाए ना और खाए और इसके बाद हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम
तो संग्रह ना करें, ये सीखना चाहिए। सायंतनम स्वस्थनम न संग्रहिया किम पुनम पौर्व मासिकम पौर्व वार्षिकम चक्रवर्ती पाजी कहते फिर ये महीने भर के लिए और वर्ष के लिए तो कायदा ही चाहिए एक दिन के लिए भी संग्रह मना किया गया है तो फिर एक महीने के लिए और एक वर्ष के लिए तो भाव अत्र सायं सो व भविष्यति जब वस्तु दृश्य अन्नादि तस्मात् संग्रहो न संग्रह अतः सायंतनम स्वस्थनम। यहाँ पर केवल भोजन के लिए ही बात नहीं कही गई है, चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कोई ऐसी चीज मजमाल जो कपड़ा आपको मिल गया तो बस जो एक से पहन रहे पहन रहे, चाहे बदल नहा कर बदलने के लिए बहिवा शादी है, अब ये मत सोचिए कि अब दो महीने के बाद एक चादर रख दिया उसको ओढ़ गया, जो कोई चीज यूज नहीं कर रहा है रख दिया है कि एक महीने के बाद या अगले साल, तब तो मधु भी जाएगा और मधुकर भी जाएंगे। नहीं दे दिया जब से ज्यादा का दिन आएगा तो भगवान देंगे या नहीं देंगे, संग्रह ना कर। लेकिन ये ऐसे बाबा जी के लिए कही जा रही बात वास्तव में जिसे अब समाज से कोई भी संबंध नहीं रहता। हाँ परेशानी न हो लेकिन संग्रह न कर यहाँ यह थोड़े भगवान कह रहे हैं कि मर जाओ जरा सह करके, यहाँ तो सारी बात का लक्ष्य ये है कि जिससे निर्विघ्न कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ो, आश्रय भगवान का यह है, और नहीं तो बिना कपड़ा उपड़ा के बानर उनर नहीं रह रहे हैं। पशुओं का कितना सेट है, बानर को टोपी भी नहीं है। लेकिन मुख्य आशय यह है कि इन वस्तुओं में कहीं आसक्त होकर के भजन से भजन में कमी न आने पाए। लेकिन अब कोई कहे कि और कमी न आवे तब भी नहीं रखना है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब वस्तुओं से भजन बढ़ता नहीं है, जब होता है तब घटता है। अच्छा, कोई उन वस्तुओं को ले भी ले तो उसका भी दुख होता है। इसलिए जो आया बांट दिया, हटा दिया, और बस शीत घाम के निवारण भर, लज्जा निवारण भर कपड़ा है, और अन्न तो मतलब रोज बस खाने भर बन। आप सुने हैं, देखे हैं, कोई कोई लोग पैसा नहीं छूते हैं, तो नहीं छूने का क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना, पैसा नहीं छूने का मतलब है कि अब हम कोई चीज खरीदेंगे नहीं, कोई ऐसी चीज यूज नहीं करेंगे जो पैसे से लिया जा रहा है। और पैसा नहीं लिए और उधर 2-4 हजार रिमोट कंट्रोल से अपने शिष्य द्वारा कुछ मंगा दिए, समय वो तो ग्रहण करना हुआ। ये कौन सा पैसा छोड़ना है? ये मधुमक्खी से शिक्षा चल रही है। संग्रहे कृते सति किम भवे, चक्रवर्ती भाई कहता है संग्रह कर लेगा तो क्या होगा, तो उस श्लोक में बता रहे सायंतनम स्वस्तनम वा न संग्रहित भिक्षुक मक्षिकाइव संग्रहियन सहते न विनश्यति। न संग्रह, संग्रह करेगा तो क्या होगा, तो मक्षिका इव तेन सह मधुना सह विनश्यति। मधुमक्खी जैसे मधु के साथ ही मर जाती, चौपट हो जाती है, उसी तरह से उस धन के साथ ही स्वाह। क्योंकि चोर बदमाश जो आएंगे तो वो अब दया नहीं करेंगे, छोड़ दो इनका धन ले चलो, अब मधुर ले धनी को छोड़ दो, धनी को छोड़ दो और धन ले लो ना, क्योंकि उसका धन जाने लगेगा तो वो आए करेगा, रोकेगा तब उसको भी मारेंगे। हाँ, वो किसी तरह से वो धन के कारण खतरा है साधु को। कोई यह कहे कि अरे रोटी रख देगा कल के लिए, तो उसके लिए कौन मारेगा उसको? कौन ले जाएगा उसके लिए भी मारते मारे गए लोग देखे गए नहीं रखना। ये प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है, आज आप रखेंगे कल के लिए, परसों रखेंगे 2 दिन के लिए, इस तरह बढ़ते बढ़ते वो गीता काजी जी फैल जाए। जैसे एक उदाहरण है, एक महात्मा का एक शिष्य था, बहुत विरक्त था, उसमें महात्मा भी परम विरक्त थे और शिष्य भी परम विरक्त, गीता पढ़ता था, छोटी सी गीता रखा था, रोज पाठ करता था, बिल्कुल विरक्त थे। और गुरु जी से उन्होंने कहा कि मैं तो जिंदगी भर विरक्त रहूंगा, आप देखिएगा कि मैं आपका कैसा शिष्य। तो गुरु जी ने कहा कि अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है भजन करो, तो भजन करने लगा। तो गीता पढ़ करके रख देता तो ताक पर, एक दिन क्या हुआ कि चूहा काट दिया गीता, उसे बड़ा सुख हुआ। तो अब एक दिन काटा, 2 दिन काटा, तो बड़ा चिंता में रहने लगा, तो गीता को पूरा काट देगा, क्या करूं। तो उसका एक साथी महात्मा है, साधु है, उसे लगा कहने के लिए ऐसा हो गया, क्या करूं, गीता काट दिया चूहा, और चूहा को हम मार नहीं सकते हैं, बड़ा फेर है, हम साधु हैं। तो भाई ये काम करो कि अगर बिल्ली यहाँ आने लगे तो चूहा खा जाएगी, छोड़ दो, एक दिन खा लेगी तो चस्का लग जाएगा। अच्छा ठीक है, बिल्ली आने लगी तो आए, तो फिर दूसरे दिन नहीं आई, फिर चूहा काटा। तो उसको दूसरे दिन बताया कि नहीं, दूध है उसको थोड़ा छोड़ देंगे पीने के लिए, तो उसके चलते आ जाएगी, बिल्ली दूध बहुत पसंद करती है, तो दूध छोड़ दिया। तो बिल्ली अब रोज आने लगी, लेकिन अब
रोज दूध कहाँ से उसको मिले। तो सोचने लगा भाई अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दूध चाहिए, अब क्या करूँ, कितना मांग लाऊ लोगों से, मांगते मांगते थक गया। दूसरे ने उसको राय दिया कि ऐसा कि गाय रख लीजिए, कितना मांगेगी, मांगना बेकार है, मांगन मरण समान है, मांगना नहीं चाहिए, गाय रख लीजिए। तो कहीं से कोई गाय दे दिया और विरक्त महात्मा गाय रख लिया। तो गाय रख लिया, पहले तो अब घास गढ़ना, खिलाना, लाना, उसमें फंसा रहा, भजन गीता पाठ सब खत्म हुआ। तो गाय की सेवा करने में रहता था, गाय गाभिन हुई, दूध देने लगी, तो फिर अब बच्चे की सेवा करना और गाय के लिए घास लाना, दूहना। और दूहने में ये हुआ कि चलो बिल्ली के लिए तो कुछ दूध मिलता था, लेकिन मन में हुआ कि कुछ जमाना चाहिए, भगवान के लिए भी आरती उरती के लिए कम से कम घी चाहिए। अब आरती वही करता था, लेकिन ऐसे ही सोचा इतना दूध हो रहा है तो कुछ मथना चाहिए, तो अपने से जोरन देना, दही जमाना और मथना सब काम चालू हुआ। अब एक मिनट भी भजन नहीं होता, मथते मथते भी परेशान हो गया, कहा कि अकेले क्या करूं। तो एक अपने साथी साधु से पूछा कि क्या करूं, बड़ा परेशानी होती है, दूध जमाना महना ये करना वो करना। तो उसने कहा कि एक काम करनी है कि दासी रख लीजिए, आप भजन के लिए छोड़िए ये सब, वो क्या करेगी। तो उसने सोचा वो ठीक कहते, ये सारी जिम्मेवारी किसकी पर दे करके अपना भजन कर। तो दासी आ गई, दासी लगी करो, तो दासी युवती थी, रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गया। तो अब उसके साथ रहने लगा, तब तक फिर कालक्रम से भगवान की दुर्विभाग्य शक्ति से फिर बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो बच्चों के पढ़ाने लिखाने पोषने की व्यवस्था, कई बच्चे हो गए, अब घर गृहस्थी पूरा फैल गई। बाद में बच्चों का विवाह हुआ, पतो भी आ गई और सब हुआ, तब तक गुरु जी आए कुछ वर्षों के बाद, दीक्षा दे तो विरक्त बनाए। उन्होंने पूछा कि अरे ये क्या हुआ, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसने कहा गुरु जी गीता फैल गई। क्या करे, गीता फैल गई, हम क्या करे, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे, तो उसने सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो इस तरह से माया फैलती है। कुछ लोग लंगोटी कहते हैं कि लंगोटी को चूहा काट दिया था, चाहे जो भी कहिए, लंगोटी बचाने के लिए बिलार को रख लेते, चाहे लंगोटी बचाने के लिए, चाहे गीता बचाने के लिए, जो भी समझ। इस तरह से बात फैल जाती है। वास्तव में शाम के लिए संग्रह की मुख्य बात नहीं, लेकिन शाम का संग्रह करेंगे तो सवेरे का भी फिर दूसरे दिन सोचेंगे, तीसरे दिन भी रखने लगेंगे, फिर अगर कोई खास्ता बहुत दिन रहने वाला सामान मिल गया तो उसे भी रख देंगे, कोई भेंट में दिया कई दिन चलेगा, नहीं तो लड्डू और चूरमा भी रख देंगे, खाते रहेगा। तो इस तरह जहाँ थोड़ी भी संग्रह की बात हुई कि वो फिर गीता फैलते देर नहीं लगे। और हो सकता है कि गेरुआ कपड़ा भी छूट जाए, धोती पहनने लगे, स्त्री के साथ हो जाए, कोई पूछे तो कहेंगे हमारे लिए बड़ा कठिन है संन्यास, वास्तव में यही रास्ता हमारे लिए ठीक, हम दम्भ नहीं करते, कपट नहीं करते, सच्चा हम आदमी है भाई, जो मन में वासना है तो विवाह कर लेना चाहिए, यही सोच करके मैं कर। देखिए बाबा जी की दुर्दशा, अब सच्चा मार्ग पकड़ ली। तो भजन करते थे सन्यासी तो झूठा मार्ग पर थे, और स्त्री में पड़ गए तो बिल्कुल सत्य ईमानदारी का मार्ग चुन लिया। ऐसे बहुत से ईमानदार घूमते रहते हैं। ईमानदार क्या है, निर्लज्ज नंबर वन, ऐसे लोग घूमते रहते हैं, सन्यास के बाद विवाह करके घूम रहे, और वो भी विवाह धर्म विधि से नहीं, मनोविधि से, अपने मन से मान लिए कि विवाह हो गया, हो गया। इस साधुओं की दुर्दशा है इसमें। तो संग्रह की लकीर न आने दे, जैसे नाय में पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए बुद्ध महाराज को छोड़ जाने दो, एक आध किलो पानी इकट्ठा हुआ है और आ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते इतना पानी हो सकता है कि नाव को डुबा सकता है, चाहे आग कहीं लगी है तो सोचे थोड़ी सी आग है, आग को बढ़ते देर नहीं लगती। जीव में स्वाभाविक वस्तुओं को इकट्ठा करना और भोगना इसकी प्रवृत्ति है, इसलिए इसकी जड़ पर ही आघात कर देना चाहिए, नहीं इसको नहीं रखना चाहिए। सन्यासी जीवन इसको कहते हैं, संग्रह नहीं करना। और नहीं अगर करेगा तो वस्तु के साथ वस्तु का स्वामी भी नष्ट हो जाएगा। केवल जान से मारा जाना ही विनाश नहीं है, कृष्ण भावना से गिर जाना यह सबसे भारी विनाश है। उस वस्तु के कारण आदमी विनष्ट हो जाता है, उसके देख रेख नहीं चीज व्यक्ति लगती है और बाद में तो सचमुच शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए। तो दो में तीन शिक्षा मिली। मधुकर की तरह गृहस्थों को बिना दुख दिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और दूसरी शिक्षा मिली कि अनेक शास्त्रों से, अनेक महात्माओं से जो भी बात मिले सार चीज वो ले लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे संप्रदाय का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। भक्ति में सहायता देने वाली अगर अच्छी बात है तो ले लेना चाहिए। और शास्त्र भी बहुत है, लेकिन बहुत बहुत शास्त्रों में जहां भी भक्ति का अंश है, भक्ति का वर्णन है, उसको ले। दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा है संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करने के कारण मक्खी का एक मधुमक्खी मारी जाती है, धन के साथ मारी। तो ऐसे गृहस्थों के लिए तो भाई संग्रह जरूरी है, बिना संग्रह के काम नहीं चलता है। लेकिन साधु का संग्रह से ही काम बिगड़ जाता है। दोनों का रास्ता अलग अलग है। जितने साधु मारे जाते हैं, वध जो होता है, उसमें दो ही कारण मुख्य होता है। या तो उसके पास धन संग्रह इतना है कि उसको मार करके उसका चेला या कोई लेना चाहता है, और नहीं तो किसी स्त्री में फंस जाता है तब मारा जाता है। विरक्तों में अगर वध देखा गया है तो इन दो कारणों से। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से नष्ट हो जाता है। मधुआ से ये बात सीखते हैं। अब हाथी से मधु करो गजह, गज से क्या शिक्षा मिलती है, जिसको मैं संक्षेप में कह चुका था। यह चाहिए कि भिक्षु सन्यासी जो हो चुका उसको पैर से भी और काठ की स्त्री को भी नहीं छूना चाहिए। पदापि ज्युवतिं भिक्षु न स्पृशेत दारणीमपि स्पृशन करीव बध्येत, स्पृशन करीव बध्येत करेण्या अंग संगता। हाथी से क्या शिक्षा मिलती है, तो हाथी स्पर्श आसक्ति के कारण मारा जाता है। टच इंद्रिया स्पर्श, स्त्री संग क्या है, इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का स्पर्श है, स्पर्श के लिए मारा जाता है। इससे कोई बहुत सुख नहीं है, नर मात्र का क्षण भर का सुख है और उसी के लिए मारा जाता है। तो यहाँ शिक्षा है, पादेन यपि पदा यपि, दो पैर नहीं कहा जा रहा है, एक पैर कहा जा रहा है, एक पैर से भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और वो भी दारवी मपी, काठ की बनी हुई स्त्री हो उसको पैर से भी नहीं छूना चाहिए। फिर हाथ से छूने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, हाथ से छूने पर या देह से छूने पर कितना विकार हो जाएगा, पैर से केवल छुआ जाए तब भी विकार हो जाएगा। काठ की स्त्री, मान लीजिए कोई काठ की कठपुतली बनाया है स्त्री, और वह कठपुतली किसी सन्यासी को प्रणाम करने के लिए झुके तो उससे भी नहीं छुआना चाहिए, नहीं तो विकार उत्पन्न हो जाएगा। और फिर जीवित युवती आकर के चरण छुए तो क्यों नहीं विकास हो जाएगा मन में। साधु लोग प्राय प्रणाम कराते हैं स्त्रियों से, किसी से भी, अगर पैर छूने आती है तो मना नहीं करते, हाथ ठीक है छू, और पैर छूते छूते फिर हाथ भी छूती है, इसके बाद सर्वांग संस्पर्श हो जाता है, इस तरह पतन हो जाता है सन्यासी। तो यहाँ कार्य पैर से भी नहीं छूना चाहिए, और वो भी काठ की या प्लास्टिक की बनी हुई औरत हो उससे भी, जैसे दुकानों में साड़ी का विज्ञापन देने के लिए तो काठ की या प्लास्टिक की स्त्री बना करके खड़ा करते हैं, देखे है ना बनारस में खास करके, अरे भगवान वहां तक में खड़ा किए, इतने गरीब जगह पर सब जगह दुकान में स्त्रियां खड़ी हैं, वो खड़ा करा करके दिखाते हैं कि इस साइज में पहनने पर ऐसा लगोगे, स्त्रियों को आकृष्ट करते इस साइज का कपड़ा है, ये कपड़ा है। तो ऐसी भी स्त्री कहीं खड़ी हो काठ और प्लास्टिक की, तो उससे पैर से भी नहीं टच करना चाहिए। कितनी बड़ी बात पाई जाए, दारवी मती दारू की बनी हो, दारू वाले काठ, ये प्रश्न अगर काठ की स्त्री है उसे पैर से भी छूट देने से क्या होगा, क्या विकार हो जाएगा। दारवी प्रकृति हरे मुने रपि मन, भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्त्री में इतना आकर्षण होता है कि काठ की बनी हुई स्त्री भी दुकान खरीदने वालों का दिमाग खींच लेती है। और आप जानते हैं आजकल के दुकानदार और सौदा बेचने वाले क्या किए हैं, जहां भी जाइए पॉकेट पर या उनके दुकान में स्त्रियों का चित्र टंगा है, क्योंकि उसको देखने के लिए लोग आएंगे और खरीदेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आएंगे। ज्यादातर आप देखेंगे स्त्रियों का चित्र, हाँ, एक सैलून देखें किसी का तो सैलून में भी उन्नाव टांग दिया है स्त्री का चित्र, जिससे कम से कम ये लोग जब तक हजामत बन रही तब तक इनका मन भी बनता रहे तो देखते रहते। देहरी अंचल में मैं देखा एक व्यक्ति अपने घर में केवल देवताओं का भगवान का चित्र रखा था सैलून में, तो मैं पूछ दिया, मैं गया था स्टॉक कराने, तो मैं पूछ दिया कि मैं सब जगह तो देखता हूँ वैश्यों का अभिनेत्रियों का चित्र लोग टांगते हैं, आप ऐसा क्यों किए हैं, आप भगवान का चित्र क्यों टांगे हैं। तो बताया कि एक बार देखो कौन महाराज आए थे, त्रिदंडी स्वामी, एक बार त्रिदंडी स्वामी महाराज आए थे हमारे यहाँ स्टॉक कराने के लिए, तो मैं बुलाया गया था, उनको बुलाया गया था, वो नहीं आए थे सैलून में। तो बाद जब मैं महाराज के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुमको कभी भी स्त्रियों का चित्र नहीं रखना चाहिए। कोई कह दिया महाराज से कि इसके घर में बहुत टंगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुमको स्त्री का चित्र को नहीं टांगना चाहिए। तो महाराज मैं वो हमारे गुरु हैं त्रिदंडी महाराज, इसलिए मैं उनकी बात मान करके और मैं अब भगवान का फोटो रखा। तो सचमुच भगवान का फोटो है, तो मैं भी जब तक छोर हो रहा था तो भगवान का चरण देख रहा था, हाथ देख रहा था, ये देख रहा था। लेकिन संसार में तो अधिकांशता ये बुद्धिहीन लोग हैं, ये लोग स्त्री को ही देखेंगे, अतः सैलून वाला भी स्त्री का चित्र टांग, सब्जी बेचने वाला तक उधर टांग देता है स्त्री का चित्र, तो कपड़ा की दुकान में जाइए वहां टंगा हुआ, दवा की दुकान में टंगा हुआ, साबुन सोडा जो भी है ये सर्फ का पैकेट है उस पर भी स्त्री का चित्र, टीवी में स्त्रियों को दिखाया जाता है किस तरह अपना केस झाड़ रही है, किस तरह तेल लगा रही है, जो तेल बेचना है उसको लगाने के बाद केसों की क्या स्थिति हो गई इसको बताते हैं टीवी, कितना साफ कपड़ा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बहुत बहुत आकर्षण। तो खैर गृहस्थ के लिए तो चेतावनी है ही दूसरे तरह की, लेकिन सन्यासी के लिए तो कड़ी चेतावनी है, सख्त चेतावनी जिसको कहते हैं वो ये है कि पदायपि पैर से भी और वो भी काठ की, पत्थर की, लकड़ी की, प्लास्टिक की भी औरतों के भी नहीं छूना चाहिए। तो फिर जीवित ज्योति स्त्री से टच कराने की तो बात ही कहां है, ये सीखना है। जो भी विरक्त बाबा जी हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, घूमते हैं तो कहीं कहीं स्त्रियां प्रणाम करने के लिए आती हैं, तो पहले से ही घोषणा रहनी चाहिए भाई कोई युवती स्त्री चरण छूकर प्रणाम नहीं कर सकती।